9 जनवरी दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। जिग्नेश मेवानी ने कहा, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर जवाब दे केंद्र।
युवा वर्ग की अगुवाई में उनके 1300 सीटों के घमंड को 99 पे आकर रख दिया, उसी के चलते हमको टारगेट किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सिनेमा घरों में फिल्में दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको ऑप्शनल कर दें, क्योंकि हमारी 12 मेंबर्स इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इसको कंसीडर कर रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी अपना माइंड ओपन रखना चाहिए।
बताएंगे क्या है हश्र झारखंड में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई का, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। दलित नेता और गुजरात से पहली बार विधायक बने जिग्नेश मेवाणी ने आज दिल्ली के संसद मार्ग में युवा हुंकार रैली की। 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने इस रैली को इजाजत नहीं दी थी। रैली में जिग्नेश मेवाणी समेत प्रशांत भूषण, कन्हैया कुमार और उमर खालिद शामिल हुए। दलितों के हकों की मांग करने के लिए आयोजित इस रैली को संबोधित करते हुए जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि देश में दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं और उन्हें बताना होगा कि वे किसे चुनते हैं, मनुस्मृति को या संविधान को। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकता है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नोह क्यू डुक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा करना जरूरी है ताकि उत्तर कोरिया के खिलाड़ी प्योंगचांग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सकें।
पुखाने प्योंगचांग डोंगे ओलंपिक चांगानन
ओलंपिक खेलों में शांति की भावना को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि उत्तर कोरिया प्योंगचांग में होने वाले खेलों में शिरकत करें। जरूरत पड़ी तो हम उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों में छूट देंगे ताकि वहां के प्रतिनिधि हमारे देश में आ सकें। इसके लिए प्रतिबंधों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की समिति और अन्य देशों से हम बात करेंगे। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नोह क्यू डुक के शब्द। इधर चीन ने दोनों देशों में होने वाली मुलाकात को स्वागत योग्य कदम बताया है और कहा है कि उन सभी देशों को इसका स्वागत करना चाहिए जो कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के पक्ष में हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी नीति के तहत ऐसे खतरनाक किस्म के हथियारों को हिजबुल्ला तक नहीं पहुंचने देंगे जो सीरिया की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। सीरियाई ठिकानों पर इसराइल के हवाई हमलों से संबंधित एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि उनका देश ईरान के सीरिया में सैन्य अड्डा बनाने का विरोध करता है। वो लोग अपनी सत्ता, अपना राज बनाना चाहते हैं। वो लोग सीरिया के पश्चिम में मौजूद टारटूस से, या कहें भूमध्य सागर में तेहरान से टारटूस तक अपना राज चाहते हैं, जिसमें दक्षिण में यमन के साथ साथ और मध्य पूर्व की अन्य जगहें भी आ जाएं। वो लोग पूरे मध्य पूर्व पर अपनी सत्ता चाहते हैं और यही ईरान करना चाहता है। हम ईरान के सीरिया में किसी तरह के सैन्य अड्डा बनाने के खिलाफ प्रतिबद्ध हैं और ये सिर्फ हमारे शब्द नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहने वाले जापान के अंतरिक्ष यात्री नोरिशिगे कानाई का कहना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर बढ़ गई है। उनका कहना है कि वो करीब 3 सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। नोरिशिगे कानाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें चिंता है कि जून में उन्हें वापस धरती पर ले जाने वाले रूसी सोयूज रॉकेट की सीट में वो फिट नहीं होंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डियां थोड़ी खुल जाती हैं और अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई आमतौर पर 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, जो वापस धरती पर आने के बाद सिकुड़ने के कारण फिर से सामान्य हो जाती है। जिम्बाब्वे की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की पत्नी ग्रेस मुगाबे को साल 2014 में जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी वो फर्जी थी या नहीं, इसकी जांच कर रही है। ग्रेस मुगाबे को यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए नाम लिखवाने के कुछ महीनों के बाद ही डॉक्टरेट की डिग्री दे दी गई थी। उनकी कोई थीसिस कभी भी प्रकाशित नहीं हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मनाही के बावजूद गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और उनके समर्थकों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर युवा हुंकार रैली की और कहा कि गुजरात में जिस तरह युवा तिकड़ी ने बीजेपी के 150 सीटों के सपने को तोड़ा, इसके लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूना, सहारनपुर और भीम कोरेगांव में दलितों पर अत्याचार का जवाब उनको देना होगा। हमारे साथी विनीत खरे भी उस रैली में मौजूद थे, वहां से उन्होंने ये विवरण भेजा है।
हम इस वक्त हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और यहाँ पर आज जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात से नए चुने गए विधायक हैं, उन्होंने एक युवा हुंकार रैली की है। यहाँ पर चारों तरफ लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली के बाहर से आए हैं। सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें रोहित वेमुला या फिर अन्य कुछ लोगों की तस्वीर है, सामने लिखा हुआ युवा हुंकार। स्टेज है उस पर जो शैला रशीद या फिर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, वो सब यहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स बैठे हुए हैं। और आइए सुनते हैं जो प्रमुख जो वक्ता थे उनका क्या कहना था।
उदाहरण बनाते इसको पनिश करेंगे और ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि कोई इसके रास्ते पर नहीं चलेगा। मोदी जी और स्मृति ईरानी मैडम, आपने उदाहरण तो बनाया है, आपने रोहित वेमुला को हमारे लिए उदाहरण तो बनाया है, लेकिन डरने का उदाहरण नहीं, डर को खत्म करके आपसे लड़ने का।
हिंसा उनका हथियार है, नफरत उनकी चीज है, हमको मोहब्बत करनी है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चल के भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। इसीलिए अपनी बातचीत में हमको हिंसक नहीं होना है।
और आखिरकार जिग्नेश मेवाणी जो जिनका मैंने बताया कि गुजरात से चुने गए विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, सुनते हैं उनका क्या कहना था।
युवा वर्ग की अगुवाई में उनके 150 सीटों के घमंड को 99 पे आकर रख दिया, उसी के चलते हमको टारगेट किया जा रहा है।
युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, मुसलमानों पर हमलों की बात यहाँ पर उठी, दलितों पर हमले लगातार जो हुए हैं उन पर उनकी बात उठी। आइए यहाँ पर कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं, आप उनसे बात करने की। यहाँ पर मीडिया का काफी बड़ा जमावड़ा है मीडिया का। एसपी सिंह जी, मेरा नाम विनीत है, बीबीसी से हम यहाँ क्यों आए हैं, किन उम्मीदों से आए हैं आप?
मैं इसलिए आया हूँ कि आज भारत भर में जब से मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार की इतनी जुल्म जाती, उनको गाय पसंद है, इंसान पसंद नहीं है। कल बलिया में एक लेडीज को पीटा गया, सरेआम टीवी पर दिखाने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल बुलंदशहर में एक दलित को सिर्फ मैच जीतने पर उसके गांव से निकलने पर, जब वो उसके गांव से निकल रहे थे तो उसके सरेआम कल मीडिया ने दिखाया कि उस दलित को 6 आदमी पीट रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
ये घटनाएं क्यों हो रही
है? ये इसलिए हो रही है कि जब तक ये आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, ये तमाम जो इनके संगठन हैं, वो पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिखों को, जितने माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको भी दबाना चाहते हैं। जो दलित कम्युनिटी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको SC कहा है, OBC कहा है, कहीं उनके अधिकारों की बात तो करते नहीं है। आप देखिए कि युवा बेरोजगार हो रहा है, लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं हम मेक इंडिया के बारे में जरा सी बता देना कोई बात। योगी यूपी में वो बछड़े को बिस्कुट खिला रहा है, किसी भूखे को, किसी लड़के को बिस्कुट खिलाते देखा? नहीं देखा। 2 महीने हो गए, सर्दी निकल गई है, स्वेटर नहीं बट रहे। आप फिरोजाबाद का देख लीजिए, आप आगरा का देख लीजिए, मिर्जापुर का देख लीजिए।
जिस दिन योगी जी जो है यूपी में, इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो है रैन बसेरे के अंदर जो है कालीन बिछा दिए गए, उनको कंबल बांट दिए गए, उनको सब कुछ कर दिया गया। और जिस टाइम मोदी जी वहाँ से गए और उनसे सारे कंबल और सारा जो वहाँ पर इकट्ठा करके, सब इकट्ठा करके ले गए।
अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। जो व्यक्ति एक ऐसे मंच पर खड़े होकर बोलता है कि भाई तुम एक हिंदू, आप मुस्लिम लड़कियों को भगा के शादी करवाओ, आप एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, आज वो देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है। तो सच्चाई ये है कि वादों पर तो नहीं उठ पा रहे हैं, और उनके केंद्र मंत्री कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, तो वादों पर तो
कहूंगे कि उन्होंने माफी मांगी।
नहीं, माफी तो मांग ली, लेकिन किस तरह के लोगों को केंद्र मंत्री बनाया जा रहा है, किस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।
जिग्नेश मेवाणी की रैली कवर कर रहे थे विनीत खरे। अपने ही आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में फिल्में दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख बदलने के बाद माना जा रहा था कि कोर्ट भी अपना फैसला पलट सकता है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से कहा था कि अदालत को अपने आदेश में बदलाव करना चाहिए। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
महज साल भर के आसपास ही अपने पुराने फैसले को पलटते हुए भारत की सबसे ऊंची अदालत ने कहा है कि सिनेमा हॉल्स में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। मंगलवार को राष्ट्रगान पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये कहा है कि हमने जो पहले स्टे ऑर्डर ग्रांट किया था कि इट इज मैंडेटरी कि अगर नेशनल एंथम बजे फिल्म शुरू होने से पहले और राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाए और लोग उसके में खड़े हों, ये मैंडेटरी है, उसकी बजाय उन्होंने कहा कि नाउ वी लीव इट एज एन ऑप्शनल।
ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरत सिंह। उन्होंने अदालत के फैसले की वजह बताते हुए कहा,
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको ऑप्शनल कर दें क्योंकि हमारी 12 मेंबर्स इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इसको कंसीडर कर रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी अपना माइंड ओपन रखना चाहिए और वही उन्होंने किया कि इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस इसको ऑप्शनल रखना ठीक होगा मैंडेटरी की बजाय।
केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल किए गए एक हलफनामे में कहा है कि वो अनिवार्य किए जाने वाले अपने निर्णय पर गौर करे। केंद्र सरकार का कहना था कि वो राष्ट्रगान और ध्वज के मामले के सभी नियमों पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों की एक समिति बना रही है। अदालत ने अपना फैसला 30 नवंबर 2016 को दिया था जिसमें कहा गया था कि सिनेमा हॉल्स में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जन गण मन बजाना अनिवार्य होगा और इसके जारी रहने तक हॉल में सभी को खड़ा रहना होगा। हालांकि अदालत ने यह फैसला लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति जगाने के नाम पर किया था और इस नियम में विकलांगों को छूट थी, लेकिन गुवाहाटी के एक सिनेमाघर जैसे मामले सामने आए जिसमें अली नाम के एक विकलांग व्यक्ति को पाकिस्तानी बुलाया गया और उन्हें बेइज्जत किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों को खड़े न होने की छूट दी थी। स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा,
तकनीकी रूप से कहें तो ये ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलटा नहीं है। तकनीकी रूप से कहें तो अभी केवल ये कहा गया है कि 6 महीने तक सरकार नए मर्यादा सूत्र बनाएगी, उसके बाद इस पे विचार किया जाएगा इत्यादि, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक आग की शर्म बचाए रखने के तरीके हैं। वास्तव में एक पुराने जो गले में फांस पड़ गई थी पिछले फैसले के चलते, उससे सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने निजात पाई है। इस लिहाज से समझदारी की बात है, इसका स्वागत होना चाहिए।
योगेंद्र यादव का कहना था कि जनता में देशभक्ति को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे प्रतीकों से नहीं बल्कि देश से गरीबी के उन्मूलन के जरिए किसानों की आत्महत्या को रोककर और दूसरे ऐसे फैसलों के द्वारा जिससे भारत की इज्जत दुनिया में बढ़े और भारतवासी भारतीय होने पर गर्व कर सकें। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
बस्तर के कोरछोली गांव की रहने वाली दो आदिवासी किशोरियों ने राज्य की पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 6 निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया है। 19 साल की सुनीता पोटम और 18 साल की मुन्नी पोटम ने राज्य हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उन्होंने पिछले साल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अर्जी दी थी। इस पर कल यानी 10 जनवरी को सुनवाई होनी है। भूमिका राय की रिपोर्ट।
सुनीता और मुन्नी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आदिवासी महिलाओं को तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं देती है और उन्हें धमकी देती है कि पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें नक्सली बताकर फर्जी मामले में फंसा दिया जाएगा।
जो घटना उस दिन घटना घटा है, उस घटना में महिला लोग पैरिन का आवाज चुन के जाते समय महिला लोग को पूछताछ भी नहीं करें, फोर्स मार पीट किया है। पूरा कपड़ा उतर के शरीर को पकड़ना है, कपड़ा निकालना है, छोटे बच्चे लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है।
सुनीता और मुन्नी फिलहाल जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में दिल्ली आई हुई हैं। ये याचिका प्रमुख तौर पर कादेनार, पालनार, कोरछोली और अंद्री गांव में हुई कथित मुठभेड़ में 6 आदिवासियों की मौत के बारे में है। सुनीता 3री कक्षा तक पढ़ी हुई हैं और मुन्नी अनपढ़ हैं। दोनों बमुश्किल हिंदी बोल और समझ पाती हैं। उन्होंने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को अपने आने का मकसद बताया।
पिछले साल में एक बार गए थे कि उतना घटना घट रहा है, लेकिन पत्रकार लोग भी कोई गए नहीं।
लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिरीक्षक विवेकानंद ने स्वीकार किया कि मामला उनके संज्ञान में है।
दिस इज एन ओल्ड केस ऑफ मोस्ट प्रोबेबली ऑफ ईयर 2015, इट्स ऑलरेडी पेंडिंग और इसमें व्हाटएवर दैट टाइम जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें केस भी रजिस्टर है एंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस एंड मोर ओवर द पिटीशन इज पेंडिंग।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में सुनीता और मुन्नी के अलावा महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था WSS Women Against Sexual Violence and State Repression भी शामिल है। संस्था के राष्ट्रीय संयोजिका रिंझिन का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से कई कई बार शिकायतें की लेकिन कुछ भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं।
उनके प्रोटेक्शन की भी बात हाईकोर्ट में की गई थी और उसी बात को हम लोग यहाँ भी एक बार रिफर्म करना चाहते हैं कि जो भी लोग बहादुरी से अपनी आवाज़ उठाते हैं उनको अपने गांव में भी फिर अलग अलग तरीके से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उस प्रताड़ना पर भी रोक लगनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ में पिछले कई दशकों से हथियारबंद माओवादी सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़े हुए हैं। दोनों पक्षों पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगता रहा है। भूमिका राय, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। कर्नाटक में एक 20 वर्षीय युवती ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि कुछ दक्षिणपंथी लोगों ने उसकी इस टिप्पणी पर एतराज किया था कि वो मुसलमानों को पसंद करती है। इस सिलसिले में BJP जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस 20 साल की महिला की कहानी बहुत तरीकों से अजीब है। पहले यह सुन लीजिए कि कहानी क्या है। ये फर्स्ट BCom की छात्र एक मुस्लिम छात्र की दोस्त थी। उसका एक दोस्त ने उसको ये भी कह दिया कि वो दूसरे मजहब के छात्र से दोस्ती रखी है जो ठीक नहीं है। इस महिला ने उसको साफ तौर से कह दिया, तो क्या हम मुसलमानों से प्यार करते हैं। उसने ये भी कह दिया कि वो किसी भी जाति या मजहब से भेदभाव नहीं करती है। ये दोस्त उससे कहता है कि वो दूसरों के साथ उसका मैसेज शेयर करेगा। महिला कहती है, आप जो चाहें कर सकते हैं। इसके बाद उनका व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो जाता है। चिकमंगलुरु के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अन्नामलय कहते हैं,
Saturday, which is on 6th evening, five people, a group of people have come to the girl's home, fighting with the girl.
शनिवार के शाम को 5 युवा उसके घर जाते हैं और उसकी माँ को कहते हैं कि उनकी बेटी एक दूसरे मजहब के लड़के से प्यार करती है। ये थे SP के अन्नामलय के शब्द। पुलिस का कहना है कि जब महिला की फोटो और व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गए तो लोगों ने महिला के चरित्र पर आक्षेप डालना शुरू कर दिया और इन 5 लोगों के उसके घर जाने के बाद इस महिला ने आत्महत्या कर ली। पहले तो उसके माता पिता ने पुलिस को ये नहीं बताया कि ये आत्महत्या का मामला था। फिर पुलिस को किसी ने फोन पर बताया कि इस मामले की जांच करनी चाहिए क्योंकि ये महिला का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट के अन्नामलय कहते हैं, जब हम उनके घर गए तो उसकी आत्महत्या लेख मिला जिसमें वो साफ तौर से कहती है कि उसकी फोटो इस दूसरे मजहब के शख्स से वायरल हो गई और उसके बाद लोग उसके चरित्र पर आक्षेप करने लगे और जब वो 5 लोग उसके घर गए और उसके माँ से बात की तो वो आत्महत्या कर ली। ये थे SP के अनमलय के शब्द। पुलिस ने उन 5 लोगों में से एक शख्स को गिरफ्तार की है और पुलिस का कहना है कि वो BJP युवा मोर्चा का सदस्य है। कर्नाटक के तटीय जिलों में लव जिहाद का अभियान बहुत सालों से चलते आ रहा है। पिछले हफ्ते ही BHP और बजरंग दल ने हिंदू महिलाओं के लिए एक नैतिक संहिता के हैंडबिल कॉलेजों और दफ्तरों में बांटी थी। लेकिन इस सारे मामले में अजीब बात यह है कि ये महिला उस मुस्लिम युवा से प्यार नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उसकी दोस्त थी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। कनाडा में ओंटारियो में कुछ गुरुद्वारों द्वारा भारतीय अधिकारियों की एंट्री बैन करने के एक हफ्ते बाद अमेरिका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कहा है कि उससे जुड़े 96 गुरुद्वारों ने भी भारतीय अधिकारियों के गुरुद्वारों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं सलीम रिजवी न्यूयॉर्क से।
अमरीका भर में कुल 96 गुरुद्वारों में अब भारत सरकार के अधिकारियों और राजनयिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सिलसिले में अमरीका में गुरुद्वारों के दो बड़े सिख संगठन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईस्ट कोस्ट और अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव मंजूर किया है। अमरीका के कई अन्य सिख संगठनों ने इस प्रतिबंध को समर्थन दिया है। प्रतिबंध लगाने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिखों के नरसंहार, भारत सरकार द्वारा अकाल तख्त जथेदार जगतार सिंह हवारा और अन्य सिखों को जेल में बंद किया जाना आदि शामिल हैं। न्यूयॉर्क में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हिम्मत सिंह ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए इस प्रतिबंध के बारे में कहा,
ये बैन जो भारतीय अधिकारी आते हैं हमारे गुरुद्वारों में, जो संगत को एड्रेस होने के लिए आते हैं, उनके ऊपर बैन है। वो हमारे नगर कीर्तनों में एड्रेस नहीं हो सकते और हमारे गुरुद्वारों में जो स्टेजों पे आके संगत को एड्रेस नहीं हो सकते, कोई सम्मान नहीं ले सकते, उस चीज पे एड्रेस है। अगर उन्होंने कोई लंगर छकना है, प्रसाद छकना है, गुरु को नमस्कार करना है, वहां पे गुरवाणी को श्रवण करना है, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। वो सिख जिन्होंने भारत के लिए 90% से 99% से ऊपर कुर्बानियां दी, उन लोगों को भारत में गुलाम रखा हुआ है और गुलामी का एहसास कराया जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं। हमारे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जगतार सिंह जी हमारा जो तिहाड़ जेल दिल्ली में है, वो भी एक कानून की वायलेशन करके उनको दिल्ली जेल में रखा गया है, जबकि उनको पंजाब में रखना चाहिए था। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि यहाँ भी जब हम अमेरिका की किसी स्टेट में जो सिख जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कराते हैं, अमेरिका के जो सिस्टम है हमारी मदद करता है, हमें फेयर जो इंसाफ देता है, तो यहाँ भी जो भारतीय कौंसलेट है वो वहां इंटरफेयर करते हैं कि नहीं जी ये हमारे ही लोग हैं। हमारे लोग क्यों है भाई, तो हमारे तो हम हमको तो भारत में कभी इंसाफ मिला ही नहीं है। हमारे अभी तक भी वहां कोई आज तक एक भी बंदा जो भारतीय सिस्टम ने फड़ के जो सिखों का कातिल है।
एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में करीब 5 लाख सिख लोग रहते हैं। अमेरिका के कई राज्यों में गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया राज्यों में कई शहरों में गुरुद्वारे बने हुए हैं। अमेरिका में रहने वाले सिखों में से कुछ लोग पिछले कई वर्षों से सिख विरोधी दंगों और खालिस्तान की मांग से संबंधित प्रदर्शन भी करते रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन हो या किसी भारतीय राजनेता का अमरीकी दौरा हो, इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं जो भारतीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और पोस्टर और बैनर थामे होते हैं जिन पर नारे लिखे होते हैं। इसके अलावा कई शहरों में वार्षिक सिख परेड भी होती हैं, जिनमें विरोध से संबंधित झांकियां भी शामिल होती हैं। अमरीका की कई अदालतों में भी कुछ भारतीय नेताओं के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में मुकदमे भी दर्ज किए जाते रहे हैं और अब कई गुरुद्वारों में भारतीय सरकार के अधिकारियों और राजनयिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने को भी इसी विरोध के सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी और अब ब्रिटेन में भी कुछ गुरुद्वारे इस प्रतिबंध में शामिल हो रहे हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
झारखंड में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई का हाल अच्छा नहीं है। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग में पिछले 25 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इस कारण संथाली, हो, खड़िया समेत 7 भाषाओं के शिक्षक ही नहीं हैं। आदिवासी बुद्धिजीवी इसे अपनी भाषा के खिलाफ साजिश मानते हैं। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
साल 1971 से पहले झारखंड इलाके के किसी भी कॉलेज में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। तब यह क्षेत्र बिहार के अधीन था और लोगों में इस बात की कसक थी कि कॉलेजों में उनकी भाषाओं की पढ़ाई क्यों नहीं होती है। तभी राज्य के गोस्टर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मल मिंज ने अपनी कॉलेज में इसकी पढ़ाई प्रारंभ करवाई। वह पहला मौका था जब झारखंड क्षेत्र के किसी कॉलेज में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा मिली। इसके बाद कई भाषाओं के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी ने साल 1973 में डाल्टनगंज कॉलेज में व्यवस्था करा दी। 1977 में रांची कॉलेज ने भी यह कोर्स प्रारंभ किया और साल 1980 में रांची यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति कुमार सुरेश सिंह ने यहां जनजातीय भाषा विभाग खुलवा दिया। रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर गिरधारी राम गौंजू बताते हैं कि तब अमेरिका में पढ़ा रहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा को इस विभाग का पहला डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
जब कुमार सुरेश सिंह वीसी थे तो उस समय कृषि जी के कहने पर यह विभाग खुल गया, उसी से ही चलना शुरू कर दिया था। उस समय और कृषि जी पढ़ा रहे थे। 81 से, और फिर हम लोगों की नियुक्ति हुई तो हम लोग पढ़ाने लगे तो 9 भाषाओं की एक मांग होने लगी, साथ ही की स्वीकृति मिली थी बाद खोटा और पंचप्रगण्य लोगों की भी पढ़ाई होनी चाहिए।
इस विभाग में झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है। प्रारंभ में यहाँ सिर्फ 7 भाषाओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब इस विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ यूं तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया और कुरुक जैसी आदिवासी भाषाओं के साथ नागपुरी, कुड़माली, खोरठा और पंचप्रगणिया जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस विभाग में नागपुरी और कुरुक को छोड़कर दूसरी किसी भी भाषा के शिक्षक नहीं है। जनजातीय भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू ने बीबीसी को बताया कि पिछले 25 साल से यहाँ कोई नियुक्ति नहीं की गई है।
एडवर्टाइज करा करके तत्काल नियुक्ति करनी चाहिए, स्पेशल इन विषयों की, चूंकि 96 में नहीं हुआ, 2008 में नहीं हुआ, तो स्पेशल इसकी इंटरव्यू करानी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पूरे दुनिया में पढ़ाई होती है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग तो केवल झारखंड के लिए है और पूरी देश और दुनिया इसको देखती है। यहाँ की जो भाषा संस्कृति है उस पर शोध करने के लिए विदेश से लोग आते हैं, तो अगर इसकी लचर व्यवस्था रहेगी तो देश और दुनिया में इसकी जो जानी चाहिए, संदेश जानी चाहिए, वो नहीं जा पाती।
ऐसे में यहाँ रिसर्च कर रहे छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं। खड़िया में PhD कर रहे किशोर केकट्टा बताते हैं कि वे बगैर शिक्षक रिसर्च करने को मजबूर हैं।
देखिए, गाइड के लिए तो टीचर नहीं है, अब मेरे लैंग्वेज में जो डॉक्टर रोज केकट्टा थी रिटायर हो गई, तो उसके जाने के बाद में अभी डॉक्टरेट कोई है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग को अदर लैंग्वेज से गाइड लेना पड़ता है।
जातीय भाषा विभाग में कुरुक पढ़ा रहे डॉक्टर हरि उराव इसे भाषाओं के जरिए आदिवासी सभ्यता को खत्म करने की साजिश करार देते हैं। उनकी चिंता है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इन भाषाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा। वे बताते हैं कि साल 1961 में हुई जनगणना के वक्त भारत में 1652 भाषाएं थीं, लेकिन 2001 में इनकी संख्या 234 रह गई। राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 12 आदिवासी भाषाएं विलुप्त होने की स्थिति में हैं। इनमें से कुछ झारखंडी भाषाएं भी हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले को संजीदगी से लेकर आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई के लिए तत्काल शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए, वरना डॉक्टर हरि उराव की आशंका सच में तब्दील हो जाएगी और तब आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब एक नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। केपटाउन टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम को 72 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 3 टेस्ट मैच की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। और अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 13 जनवरी से सेंचुरियन में खेला जाएगा। अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए या फिर पिछला जो खेल हुआ था उसमें किस तरह का उलटफेर हुआ, क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया?
मुझे लगता नहीं कि कोई उलटफेर हुआ है। हाँ, उलटफेर इस बात पे हुआ है कि आप 70-2 थे, उसके एकदम से बाद आप ढह गए, वो आपके लिए चिंता का विषय है। वो भी उस टीम के खिलाफ जिसका एक बॉलर आपको पता था इंजर्ड है, वहां पे आप जरूर कुछ सोचने की कोशिश करेंगे और अपने मैच में अलग जो रणनीतियां हैं वो बनाएंगे। देखिए, टीम बढ़िया और खराब नहीं हो जाती एक मैच के साथ। या आप अपने घर पे जीत रहे थे तो आप ये सोचेंगे आप कहीं भी जाएंगे वहां जीत जाएंगे, आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा।
वैसे इस मुकाबले में भारत को हार का सामना जरूर करना पड़ा हो, लेकिन अपनी लाजवाब विकेट कीपिंग से भारतीय विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने सभी का दिल जीत लिया। और अब बात करते हैं टेनिस की। ताजा विश्व टेनिस रैंकिंग जारी हो गई है और स्पेन की स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल नंबर 1 पे बने हुए हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा में प्रांतीय असेंबली के बाहर एक बम धमाका होने की खबरें मिल रही हैं। स्थानीय मीडिया से मिल रही खबरों के अनुसार बम धमाके के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य घायल हुए हैं। दलित नेता और गुजरात से पहली बार विधायक बने जिग्नेश मेवाणी ने आज दिल्ली के संसद मार्ग में युवा हुंकार रैली की और कहा कि देश के दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाड़ी प्योंगचांग में होने वाले विंटर ओलंपिक में हिस्सा ले सकें, इसके लिए वो उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अपनी नीति के तहत वो ऐसे खतरनाक किस्म के हथियारों को हिजबुल्ला तक नहीं पहुंचने देंगे जो सीरिया की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। 3 सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे जापान के अंतरिक्ष यात्री नोरिशिके कानाई का कहना है कि अंतरिक्ष पहुंचने के बाद उनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर बढ़ गई है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।